तो हमारे सामने कुछ प्रश्न है जो मानवों को पूछने चाहिए, तभी वो मानव है। तो मैं इस पर कल चर्चा कर रहा था कि भगवान कौन है, भगवान है भी या नहीं। सबसे पहले तो यही है, उससे पहले भी है कि वास्तविकता क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं यहां पर, और भगवान कौन है और क्या है, उनको प्राप्त कैसे करना है और उनको प्राप्त करने से क्या मिलेगा। ये अगर हम रिलीजन भी पढ़ें तो रिलीजन में, मतलब धर्म में, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी धर्म का दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र कहते हैं इस तरह से। तो ये प्रश्न जो है, ये कुछ प्रश्न है जो जानवर कभी नहीं पूछ पाएगा, केवल हम ही पूछ सकते हैं। और यही जानवर और हमारे में फर्क है। हरे कृष्ण। तो यही जानवर और हमारे में फर्क है कि हम लोग कुछ सोच सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो कि वो कभी नहीं पूछ पाएंगे और जानवर नहीं पूछ पाएंगे। तो आप तो कोई कह सकता है कि ठीक है, मानव ये भी तो पूछ सकता है प्रश्न की, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, विज्ञान की रिसर्च कर सकते हैं, या आपके बेरिंग कॉलेज में पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, वो भी तो जानवर नहीं पढ़ सकते। तो ये भी फर्क हो गया बहुत बड़ा। अगर कोई कहे कि ठीक है मॉडर्न एजुकेशन, एजुकेशन लेना भी एक जानवर और एक इंसान को फर्क कर, अलग करता है। और जनरली जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वो यही कहते हैं कि ये एजुकेटेड नहीं है तो ये जानवर है, हम एजुकेटेड हैं इसलिए हम जानवर नहीं है। मगर मैंने जैसे कल बताया था कि जितनी भी विद्या है, जो भी एजुकेशन हम ले रहे हैं, उसका भी अंततः लक्ष्य क्या है, भोग करना, खाना पीना सोना, एंजॉय करना। तो जो जानवर कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं, मगर हम टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, समझे। बहुत सारी चीजें बनाकर हम वही कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं। जैसे शीला प्रभुपाद कहते हैं, हमने प्लेन बना लिया, मगर प्लेन में बैठ के क्या कर रहे हैं, वही खा रहे हैं जो कुत्ता सड़क पे खा रहा है। इतनी मुश्किल से हमने प्लेन बनाया इधर उधर जाने के लिए, जो भी है, मगर प्लेन में बैठकर हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना ही है बस, नहीं एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। इधर उधर हम क्यों भी, हम कहीं जा भी रहे हैं तो क्यों, क्या करने जा रहे हैं वहां पर, सेम एंजॉय करने, खाने पीने सोने, बस यही है। तो अंततः लक्ष्य वही है हम लोगों का, एजुकेशन का भी। इसलिए आजकल की जो एजुकेशन है वो भी एक तरह से जानवर ही है, एजुकेटेड एनिमल हम ये कह सकते हैं, एजुकेटेड एनिमल है।
इसको इंक्रीज करो, मतलब क्या हो रहा है, जस्ट इंक्रीज कर दो, दैट्स इट।
हरे कृष्णा, हरे, और इंक्रीज करो, हरे कृष्णा, ठीक है। सो एक अनएजुकेटेड एनिमल है, एक एजुकेटेड एनिमल है, दोनों ही जानवर है। तो ये तो चलो मैंने कल चर्चा की थी, मगर अब उनमें और हमारे में जरूर एक जरूर फर्क हो सकता है कि ये फर्क जरूर हो सकता है कि जानवर कभी ये नहीं पूछ पाए। वेल यू नो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है चलो बस, ये सब बहुत ही तेज हो गए। ठीक है, दैट्स इट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जानवर ये कभी नहीं पूछ सकते कि भगवान कौन है और उनको प्राप्त कैसे करना है, ये कभी नहीं पूछ पाएंगे। तो हमें ये पूछना है। और मैं आज सुबह चर्चा कर रहा था कि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वो है धर्म, धर्म का पालन करना। और धर्म क्या है, धर्म कोई कोई पहले ही धर्माप्रोच तो कहते पत्र, धर्म कोई वो नहीं है कि अच्छा काम करना, ये दान करना या यज्ञ करना या तप करना, ये सब धर्म नहीं है एक तरह से। धर्म है परमो निर्मत सरानाम सताम, धर्म है मतलब कि भगवान की भक्ति करना। कैसी? शुद्ध भक्ति करना, ये धर्म है। शुद्ध भक्ति मतलब द्वेष रहित होकर भक्ति करना। तो आज सुबह मैंने बताया था निर्मत सरानाम सताम, द्वेष रहित भक्ति को ही हम भक्ति कहते हैं, उसी से भगवान की प्राप्ति होती है। तो जो द्वेष है उस वो मैंने समझाया था सुबह कि द्वेष का मतलब है कि ये देखना कि सारी चीजें मेरे लिए हैं, कृष्ण के लिए नहीं है, ये द्वेष है। कृष्ण के लिए क्यों है, मेरे लिए होनी चाहिए, इसी को द्वेष कहते हैं। नहीं, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, मगर अगर वो भक्ति कर रहा है, मंदिर आ रहा है, नाम ले रहा है, मगर फिर भी वो ये देख रहा है कि वो उसको संसार को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, उसको लग रहा है मेरे लिए है, तो इसका मतलब है उसकी भक्ति अशुद्ध है, उसको कृष्ण से द्वेष है, क्योंकि वो कृष्ण को नहीं देना चाहता, खुद लेना चाहता है। तो वो भक्ति भी श्रीमद् भागवतम के अनुसार प्रशंसनीय नहीं है, जो कि साधारण लोग ऐसी भक्ति करते हैं। नहीं, जो साधारण लोग हैं, जो मंदिर जाते हैं या जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, आस्था रखते हैं, उनकी भक्ति होती है थोड़ी सी, उनकी श्रद्धा तो होती है भगवान में, मगर उनको कोई ज्ञान नहीं होता, और उनकी अशुद्ध भक्ति होती है, क्योंकि वो मंदिर में जाते हैं मगर बाकी टाइम संसार को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, मगर उनको लग रहा है मेरे लिए, भगवान के लिए नहीं है। इसको कहते हैं द्वेष। जब कोई व्यक्ति द्वेष से रहित हो जाता है, भक्ति करता है और सारी संसार की चीजों को भगवान के आनंद के लिए देखता है, अपने आनंद के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो वो निर्मत सर भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उसी से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसी भक्ति से क्या होता है, श्रीमद् भागवतम आगे कह रही है, वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम, कि ऐसी भक्ति करने, शुद्ध भक्ति करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। और वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, और हमें वास्तविकता पता लग जाएगी कि संसार क्या है, मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और ये संसार जो है वो भी अपने आप नहीं चल रहा, वो भगवान के द्वारा चल रहा है, ये समझ आ जाएगा, हमें अपना असली स्वरूप पता लग जाएगा। तो ये वेदम वास्तव मात्र, तो अभी हम सब माया में है, अभी हमें लग रहा है कि मैं यही हूं, नहीं मैं बता रहा था, मगर एक्चुअली हम नहीं है, ये बहुत बड़ा रहस्य है जो कि किसी को नहीं पता लग सकता, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर ज्ञान के, शास्त्रों के, किसी को नहीं पता लग सकता। कृष्णा इसलिए कृष्णा कह रहे हैं रहस्यम ही तद उत्तमम, अर्जुन है सबसे बड़ा रहस्य है, जिसने इसको जान लिया वो विद्वान है, जिसने नहीं जाना वो मूर्ख है। कृष्ण की नजर में, कृष्ण की दृष्टि में वो हर इंसान मूर्ख है जो अपने आप को नहीं जानता, चाहे वो कितने बड़ा इंटेलिजेंट आइंस्टाइन भी क्यों ना हो जाए, या बहुत सारे न्यूटन हो जाए, जो भी हो जाए, उनको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, मगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, या फिलोसोफर्स हो जाए, दार्शनिक देश के, पाश्चात्य देश के बहुत दार्शनिक लोग, जैसे एरिस्टोटल, हेजल, ह्यूम, इतने सारे दार्शनिक लोग आए हैं, मगर वो लोग ये नहीं समझ पाए, वो लोग अपने आप को जान नहीं पाए, वो लोग इसी में अटके रहे, अपने मेंटल स्पेकुलेशन में, अपने भ्रम में अटके रहे। तो कुछ लोग इस संसार में शरीर के काम कर रहे हैं, शरीर के स्तर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग मन के स्तर पे काम कर रहे हैं, मतलब कि आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, वी हैव टू टेक इट आउट, यू नो, इफ शी डिस्टर्ब्स। तो कुछ लोग पेंटर हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, मन के स्तर पे काम करते हैं, नॉवल राइटर्स हैं, राइटर्स हैं, कुछ लोग बुद्धि के स्तर पर काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग सोचते हैं बहुत कुछ, कुछ लोग शरीर के स्तर पर काम करते, कुछ लोग क्या 90% लोग शरीर के स्तर पर रहते हैं, शरीर के लिए जीते हैं। नहीं, हम सब लोग किसके लिए जी रहे हैं? शरीर के लिए, अगर सोचें सही से तो, तो अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको लगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं शरीर के लिए जी रहा हूं, हम और किसी के लिए नहीं जीते। शरीर को खाना मिल जाए, अल्टीमेटली काम इसलिए कर रहे हैं पैसे मिले। घर में भी अगर हम सोचते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए जी रहे हैं तो वो नहीं है, एक्चुअली गलत है वो। अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो कौन माता पिता के लिए जी रहा है? कोई नहीं जीता, वो अपने ही आनंद के लिए जी रहा है। उसको, उसके माता पिता उसको आनंद दे रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। अगर उसका माता पिता आज उसको तंग करने लगे तो घर को छोड़ के चला जाएगा, और क्या होगा? नहीं, डाइवोर्स भी इसलिए होते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं क्योंकि एक दूसरे को संतुष्टि मिल रही है, इसलिए पति पत्नी साथ में। अगर 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 संतुष्टि नहीं मिलेगी तो तलाक, दैट्स इट। सो शारीरिक स्तर पे मोस्टली सब लोग हैं, मगर शास्त्र कह रहे हैं कि इंद्रेभ्य मना बुद्धि, इंद्रेभ्य परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि परसस्तु ही स। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर आत्मा है। आत्मा के लिए जियो, अपने आप को पहचानो। अपने आप को नहीं पहचानोगे तो ह्यूमन लाइफ फेलियर है। तो हम शुद्ध भक्ति के द्वारा अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम कौन है, और उसके बाद हम ये भी पहचान सकते हैं कि भगवान कौन है। और यही जानना असली में सब कुछ है। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, सपोज आपको मैं एक एक दूसरी कंट्री ले जाऊं। नहीं, हाँ, जैसे मैंने बताया, सपोज आपकी आंख बंद, आंख में पट्टी लगा दी और किसी और कंट्री में ले जाए, और वहां पे जाकर आपकी आंख की पट्टी खोल दी, तो आप क्या पूछोगे प्रश्न सबसे पहले? कहां हूं, है ना? आप ये तो नहीं पूछोगे, आप ऐसे तो नहीं सोचोगे खाना दो मुझे, पैसे कमाने, एजुकेशन लेनी है। किसी कोई ऐसा नहीं सोचेगा। अगर कोई ऐसा सोचेगा भी तो लोग कहेंगे पागल है। नहीं, कहेंगे पागल है, ऐसे प्रश्न नहीं आने चाहिए मन में। अगर आपको ऐसे देश में ले जाए जहां पे आप पट्टी है और पहली बार जा रहे हो, तो नेचुरल क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप, अगर आपको कोई पैसे भी देगा तो आप कहोगे भैया पहले मुझे बताओ कहां है, उसके बाद मैं जो भी काम करूंगा, उससे पहले कुछ काम नहीं। ठीक है? नहीं ठीक है। और अगर आपको दुनिया के सारे इंजॉयमेंट दे दें, सारे भोग दे दें, फिर भी आप कहोगे चलो ये सब तो सही है, मगर पहले बताओ मैं कहां हूं, वरना माइंड, मन को इतनी संतुष्टि नहीं होगी। आप चाहे करोड़ों भोग में पड़ जाओ वहां अमेरिका में जाकर, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहां हूं। ऐसे आप देखो, जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्मृति भूल जाते हैं, उसको कहते हैं एमनेजिया, अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। सो, आप उनको कुछ भी दे दो, वो ये प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं कौन हूं? उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, मेरा नाम क्या है? ठीक है, वो हमेशा परेशान रहता है, जो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि एक एक इंग्लिश में कहते हैं उसको आइडेंटिटी क्राइसिस, उसको अपने क्या कहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे कहेंगे, अपनी पहचान भूल गया। हाँ, अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, तो उसमें मन परेशान हो जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां कहां हूं, वो उसको कुछ काम नहीं कर पाएगा सही से। सो उसी प्रकार अगर आप, हम इस संसार में हैं तो सबसे पहले प्रश्न क्या आना चाहिए, मैं कहां हूं, बस, और मैं कौन हूं। अगर आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहा तो आपको हम पागल कहेंगे। इसलिए शास्त्रकार व्यासदेव जी कह रहे नूनम प्रमत्त कुरुते विक्रम, लोग पागल हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे कि मैं कहां हूं। सिंपल क्वेश्चन है, और मैं कौन हूं। सो ये है वेदम वास्तव मत्र, जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये प्रश्न आ जाएंगे हमारे हृदय में, क्यों, मैं कहां हूं, मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, बस हैपनिंग है ना, उसको ऑफ नहीं कर सकते क्या? सिंपल टू ऑफ इट, यू नो। सो तो अगर ये प्रश्न नहीं आ रहे हमारे मन में तो देयर इज अ प्रॉब्लम. भक्ति करने से धीरे धीरे आ जाएंगे क्वेश्चन से हृदय में, कहां हूं मैं, कौन हूं. और जब ये क्वेश्चन, जब ये प्रश्न आएंगे तब एक्चुअली हमारा असली जीवन शुरू होगा. तब एक्चुअली हम पागलपंथी से बाहर आ गए. नहीं, बाकी कुछ भी जानना है संसार में पागलपंथी है. वो हो सकता है सही हो. मान लीजिए कोई पागल आदमी ठीक हो जाए, उसको याद आ जाए कि मैं कौन हूं कहां हूं, फिर उसके बाद वो काम करे तो ठीक है. उससे पहले काम कर रहा है तो सब बेकार है. नहीं, और उसको शांति भी नहीं मिलेगी उसमें. इसलिए हम लोगों को शांत, हमारा मन संतुष्ट नहीं है और एक्चुअली पागलपंथी है पागलपंथी. सो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं वास्तविकता जानो, समझने की प्रयास करो. ये इस प्रश्न को उत्तर ढूंढो कि मैं कहां हूं. उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, भागवतम में दिया है कि संसार क्या है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं केवल बटाला में, इंडिया में या अर्थ पे नहीं हूं, ये धरती कहां है, पूरे यूनिवर्स सृष्टि कैसे हुई है, सृष्टि की सृष्टि समझनी पड़ेगी पूरी. और ये समझना पड़ेगा कि वहां पे हम कहां हैं प्लान में. तो जैसे अगर आपको, अगर आप कहीं खो जाओ जंगल में और आपको वहां से निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा. रास्ता ढूंढ सकते हो मगर बहुत ही बड़ा जंगल है, आप कैसे ढूंढोगे. तो उसके लिए आपको कोई मैप चाहिए. मैप मिल जाएगा तो बेस्ट है. नहीं तो आप समझ सकते हो मैं यहां पर हूं इस पोजीशन में और मुझे वहां जाना है, और फिर आराम से जा सकते हो. सो अगर एक चींटी है जंगल में, उदाहरण के लिए, तो उस चींटी के लिए उसके मन में प्रश्न नहीं आएगा कि, उसके मन में कभी प्रश्न भी नहीं आएगा कि मैं जंगल से बाहर निकलूं. नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि मैं जंगल में हूं, है नहीं, उसको पता ही नहीं मैं जंगल में हूं. और उसको लग रहा है छोटी सी जो जगह होगी यही सब कुछ है. नहीं, उसको ऐसा लग रहा है. मगर जो आदमी है वो सोच सकता है कि मैं जंगल में हूं और मुझे निकलना है यहां से, डेंजरस प्लेस है. चींटी को समझ नहीं आएगा क्योंकि आदमी को पता है कि जंगल के परे भी कुछ चीज होती है. जंगल के परे सिटी होती है, लोग रहते हैं और यहां डेंजरस सिचुएशन है. मगर चींटी को ये नहीं पता. उसी प्रकार इस संसार में हम हैं, मगर अगर हम चींटी की तरह रहेंगे तो हमें यहां से निकलने का मन भी नहीं करेगा. चींटी को नहीं पता कि जंगल के परे क्या है क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं. मगर आदमी को पता है कि मैं जंगल में हूं भैया, इसके परे एक सेफ जगह भी है, मुझे वहां जाना है. तब उसका मन करेगा मैं निकलूं और रास्ता ढूंढूंगा, मैप ढूंढेगा, जंगल को पहचानेगा. पहले जंगल को जानना पड़ेगा मैं, इसका मैप कहां है, कैसे कैसे रास्ता जा रहा है, फिर निकलेगा. उसी प्रकार जब तक हमें यह नहीं पता कि इस संसार के परे भी कुछ होता है, कोई जगह है, मैं यहां पर आ गया हूं, तब तक हमारे में कोई इच्छा नहीं आएगी यहां से बाहर निकलने की. तो इसीलिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि, सबसे पहले यह ज्ञान चाहिए कि इस जो जहां पर हम हैं इसके परे भी कोई लोक है. ये नॉलेज है, ये इसको कोई प्रूफ नहीं है. आपको इसका प्रूफ क्या, हमें दिखाओ कोई फोटो है, कुछ फोटो नहीं है, फोटो नहीं है. मगर फोटो, मगर इंफॉर्मेशन है शास्त्रों में, जो वहां पे हैं या जो लोग वहां से आए हैं यहां पर, जो लोग देख चुके हैं उनको पता है कि वहां पे कुछ है और वो बता रहे हैं. और साथ साथ मैप भी दे रहे हैं संसार का कि देखो ये मैप है, तुम यहां पे बैठे हो, वो वहां पर है और वहां पे जाना है. और डिस्टेंस भी दी है. एक्चुअली मजे की बात यह है कि आप सोचो कि ये तो काल्पनिक है, मगर भागवतम में वो आध्यात्मिक जगत की यहां से प्रॉपर डिस्टेंस है. कितना डिस्टेंस था, कुछ था ना, मैं भूल गया, एग्जैक्ट डिस्टेंस है, कुछ योजन, कुछ करोड़ों योजन है. मतलब अगर डिस्टेंस दिया है तो इसका मतलब होना चाहिए वो जगह. नहीं, अगर मैं बोलूं कि कोई जगह है टिम्बकटू, ये क्या है, मगर है जगह टिम्बकटू, तो मैं बोलूं टिम्बकटू यहां से 2000 किलोमीटर दूर है, तो आपको लगेगा हाँ कोई जगह है. नहीं, अगर मैं बोलूं है टिम्बकटू, तो कहेंगे ये क्या है. तो ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि वैकुंठ है, आध्यात्मिक धाम है. तो जो जो संत लोग होते हैं बाकी, वो लोग तो इस तरह बोलते हैं, ऐसा लगता है कि है ही नहीं, उनका प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि एक धाम है, हमें भगवान के धाम जाना है, देखो मृदंग बजाओ, रो और थोड़ी पूजा करो, चले जाओगे। मगर ये शास्त्रीय नहीं कह रहे, ये तो बेवकूफी है। शास्त्र कह रहे हैं कि आध्यात्मिक धाम है और वो इतने 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 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्ट डिस्टेंस है। इस धरती के ऊपर कौन सा लोक है, भूलोक, उसका डिस्टेंस है 800 किलोमीटर, उससे ऊपर, उससे और 800 किलोमीटर भूवर लोक, स्वर्ग है, और उसके ऊपर 1600 किलोमीटर महर लोक, तपस लोक, जनास लोक, सत्य लोक, और उसके ऊपर फिर उसके बाद सृष्टि की और भी लेयर्स हैं, और फिर उसके परे आध्यात्मिक धाम है और उसका डिस्टेंस भी है। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है, किसी ने बताया नहीं हमें, बस ये, हम चींटी की तरह पड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि इसके परे भी कुछ है। इसलिए हमारे में इच्छा भी नहीं आ रही कि हम निकलें, इसलिए हम समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे कि यहाँ मैप होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, हम अपने में पड़े। जैसे चींटी अपने में होती है, मस्त है, नहीं? अगर मान लीजिए चींटी आपके यहां पर, वो चींटी यहां पर है कुछ, और अब यहां पर बैठ के मैप देख रहे हो जंगल से बाहर कैसे निकलना है, तो शायद उसको कोई मतलब ही नहीं होगा आपसे, नहीं उसको कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक चींटी है जंगल में, कुछ चींटियां हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, और मान लीजिए बिल्कुल ही जंगल के बिल्कुल उनके घर के बिल्कुल ही पास एक सुपर थ्री वे हाईवे बन रहा है, समझ रहे हो, हाईवे बहुत बड़ा, तो वो क्या चींटियां क्या खुश होंगी, ओह मजा आ गया, हाईवे बन रहा है, अब हम जाएंगे उस पे, हाँ अब अच्छा रहेगा। या सपोज उनके घर के पास एकदम से मेट्रो निकल रही है, तो वाह मजा आ गया, मेट्रो में जाएंगे। वेल, उनको कोई मतलब ही नहीं, उनको समझ भी नहीं आएगा क्या हो क्या रहा है, नहीं? अगर आप पूरा बन भी दिया तब भी उनको समझ ही नहीं आएगा कि कुछ हुआ भी उनके घर के पास, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो समझ सके कि उनके घर के पास कुछ हो भी गया, नहीं? तो उसी तरह अगर इतने सारे लोग हैं और हम लोग कुछ ही लोग हैं बटाला में यहां पे बैठे हुए, और यहां पे बैठ के हम समझ रहे हैं कि इस संसार से परे भी कुछ कोई जगह है, जान रहे हैं उसके बारे में, और हमारे पास मैप भी, हम कहां हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी लोग चींटी जैसे हैं वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, उनको कभी नहीं समझ आ सकता कि हम लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदमी के लिए वो हाईवे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर चींटी के लिए उसको कोई मतलब ही नहीं है, नहीं? तो अपनी अपनी स्थिति से फर्क पड़ता है। तो जो लोग बिल्कुल ही भोग में फंसे पड़े हैं, जो पैसे से अंधे हो चुके हैं, जो काम वासना से अंधे हो चुके हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिनको बस मनी, एजुकेशन, अमेरिका, लड़कियां, यही दिखाई देगा, लड़कियों को लड़के दिखाई देंगे, बस यही है सेक्स, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनको, तो उन लोगों को अगर हम चाहे कितना ही कुछ भी इंपॉर्टेंट बात कर ले, उनको कभी नहीं समझ आएगा, सपने भी नहीं हो सकता कि हम कुछ अंदर बैठ के मंदिर में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए हम इस मेटेरियल संसार से बाहर हो जाएंगे, नहीं? कभी भी नहीं आएगा, नहीं? जो जैसे हम लोग अभी धरती पे हैं, और एलियंस भी होते हैं, पता है एलियंस, पता है ना एलियंस क्या होते हैं, क्या? हाँ, दूसरे ग्रह, तो एलियंस होते हैं। तो एलियंस क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, साइंटिस्ट या इंसान को कुछ भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है एलियंस ने ऐसी मशीन बना ली हो जिससे वो आध्यात्मिक धाम जा सकते हैं, हो सकता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, मगर हमें कुछ भी नहीं पता और हम कुछ कर भी नहीं सकते उस ज्ञान का, नहीं? अगर उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना ली है तो उस टेक्नोलॉजी का हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी होती कैसी है नहीं? तो उसी प्रकार हम लोग यहां पर हैं और बाकी लोग बाहर हैं इस मंदिर के, और उनको कुछ आइडिया नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है जानना, बहुत ही जरूरी है संदेश। इसलिए शास कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, टाइम नहीं है अब, स्टॉप इट, और ये जानो, समय नष्ट मत करो। नहीं इस तरह से, मतलब शास्त्र अर्जेंसी कह रहे हैं, अर्जेंसी मतलब इमरजेंसी है, इमरजेंसी ये है क्योंकि अगर हम मर गए और हमें नहीं पता लगा तो फिर पता नहीं कहां होंगे, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकता कोई भी। सो वेदम वास्तव अत्र, तो हमें वास्तविकता पता लग गई, सिंपल। तो भक्ति या आध्यात्मिकता ऐसा नहीं है कि कोई किसी को करंट लगेगा या किसी को ध्यान आएगा या लाइट दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो बेकार की बातें हैं, ये सब तो लोग कहते हैं कुंडलिनी जागृत होगी और ध्यान में बैठोगे फिर कुछ कुछ अंदर होगा, या अंदर 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 देखना पड़ेगा आपको। तो अंदर कैसे देखेंगे, किसी को पता अंदर कैसे देखते हैं, किसी को पता है आज तक? मुझे तो समझ नहीं आज तक अंदर कैसे देखते हैं, आंखों को अंदर करें क्या क्या करें क्या, मतलब व्हाट यू हैव टू डू, और अंदर देखना कैसे है, हमारे अंदर है ही क्या, अंदर तो काट के पता लगेगा अंदर क्या है। मतलब अंदर देखो, मतलब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अपने अंदर झांक के देखो सब अंदर ही है, मैं करना क्या है किसी को कुछ नहीं पता, और कैसे करना है ये भी नहीं पता। नहीं, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और पोएट पोएट और शास्त्रों में ऐसे लिखा होगा अपने अंदर अंतर्दृष्टि से हृदय में देखो और चक्रों में देखो और उसमें घंटियां होंगी, आवाजें आएंगी और फिर तुम महान बन जाओगे। मगर मगर जो ऐसा बोल रहा है शायद उसको भी नहीं पता कि कैसे करना होता है, किसी को नहीं पता, मतलब उसको कोई प्रैक्टिकल मतलब ही नहीं है। नहीं, सो इसलिए शास्त्र ये सब नहीं कह रहे अंदर देखो अंदर देखो, ये सब बेकार की बातें हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि नॉलेज लो, बाहर देखो बाहर, अंदर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर बहुत देख लिया, अब बाहर देखो कि तुम कहां हो, और ये समझो कि मैं कहां हूं और यहां से इसके परे भी कोई है और वहां जाने की कोशिश करो, अंदर अंदर कोई देखने की जरूरत नहीं है। सो ये इसको वास्तविकता कहते हैं, वास्तविकता। इसलिए जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, जो भी सतगुरु कहते हैं सतगुरु, वो सब असतगुरु हैं, असतगुरु हैं, वो कोई सतवत गुरु नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं आज तक। आप आस्था सीरियल देखते हो गए, जो भी है इतने सारे गुरु नहीं आते, उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं होगा कि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। नहीं, ऐसा किसी ने बताया कि एक आध्यात्मिक धाम भी है, वहां जा सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, और उसकी डिस्टेंस इतनी है। ये तो सपने भी वो खुद ही नहीं सपने में सोच सकता कि उसकी डिस्टेंस भी कुछ होती है, कि वो इतने इतने किलोमीटर दूर है, कभी भी नहीं सुना होगा आपने। सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, सब बोलते हैं अंदर देखो ज्योति देखो, बस ये करो वो करो, लोग सुनते हैं, लोगों को लगता है आध्यात्मिक हो गए और कुछ भी नहीं कर सकते। करोगे क्या फिर, क्या क्या कर लोगे उसका, कुछ नहीं हो सकता। अंदर देखोगे तो प्रॉब्लम ही है, अंदर बहुत ही गंदगी है, इसलिए अंदर मत देखो कभी, बाहर ही देखो। कहां देखो, बाहर यहां पे देखो कृष्णा को, अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, अंदर प्रॉब्लम है। सो हमें कृष्ण को देखना है, अंदर नहीं देखना। अंदर देखो, ये बड़ा फनी सी बात है वैसे, अंतर्मुखी कहते हैं ना ऐसे कुछ, अंतर्मुखी हो जाओ। मगर शास्त्र कहते हैं सेवोन्मुख हो जाओ, अंतर्मुख नहीं, कृष्ण को देखो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। इसलिए एक वैष्णव है, वो कहते हैं कि किसी को अंदर देखना है तो अंदर देखता रहे करोड़ों जन्मों तक, मुझे कुछ लेने देना उससे। और किसी को कुछ देखना नहीं तो वो भी ऐसी पड़ा रहा है, मुझे उससे भी कुछ नहीं लेना देना। जहां तक हमारा सवाल है, हमें केवल कृष्ण को देखना है बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि कृष्ण भगवान है, और भगवान को देखना ही असली में देखना है। नहीं और क्या देखोगे इस संसार में, कुछ देखने के लिए कोई वर्दी ऑब्जेक्ट ही नहीं है। वर्दी ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कि कैसे कहेंगे हिंदी में, कोई योग्य वस्तु ही नहीं है, क्योंकि भगवान ही वास्तविक वस्तु है, बाकी सब माया है। माया मतलब थोड़े टाइम के लिए रहेंगी फिर नहीं रहेंगी। एक एक पता है, मैं छोटा था तो एक 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 गाना इतना नहीं गाना भी था, ये देखने की चीज है, हजार बार देखो, क्या था पता नहीं, पता नहीं कैसे था, मैं मुझे याद है, हाँ ये था, सो वाज दैट इज कृष्णा। पता नहीं आता मुझे, थोड़ा बहुत याद है था ना ऐसा कुछ था या प्रॉब्लम वो तो हीरोइन के लिए कह रहा हुआ मगर बट व्हाट्स अ पॉइंट यू नो पॉइंट क्या उसका पॉइंट क्या उसकी हीरोइन तो बूढ़ी होगी बदसूरत कुरूप शादी के पहले सब सुंदर होते हैं शादी के बाद सब बदसूरत हो जाते हैं नहीं सुंदर नहीं रहते फिर शादी के कुछ ही सालों बाद सब अगली हो जाते हैं कुरूप हो जाते हैं स्त्रियां शादी के पहले सुंदर हो रहती हैं अगर सुंदर हैं तो वैसे तो सुंदर सुंदरता इस संसार में नहीं है सुंदर आध्यात्मिक जगत में भगवान की लक्ष्मियां सुंदर हैं उनके सामने क्या सुंदरता होगी या स्वर्ग की अप्सराएं सुंदर हैं यहां कोई सुंदरता नहीं है तो कृष्णा कभी बूढ़े नहीं होंगे कृष्णा कभी कुरूप नहीं होंगे क्योंकि कृष्णा का भी जन्म नहीं है कभी मृत्यु नहीं है कभी बूढ़े नहीं होते हमेशा ऐसे ही रहते हैं जैसे आप देख रहे हो हमेशा ऐसे ही रहेंगे और भगवान के धाम में जो भी है वो उनमें भी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा कभी मरेंगे नहीं कभी कुछ भी नहीं होगा और आप भी वहां चले जाओगे तो आपके हाथ भी ऐसे ही होगा आप भी कभी बूढ़े नहीं होगे आप भी कभी मरोगे नहीं हमेशा के लिए जिंदा रहोगे तो कौन व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं चाहता नहीं एक बार शिला प्रभुपाद बोल रहे थे किसी को लेक्चर में कि देखो आप भगवान के धाम जाओगे तो आप कभी जन्म नहीं होगा कभी मृत्यु नहीं होगी कभी बूढ़े नहीं होगे कभी कोई दुख नहीं है तो तुम जाना चाहते हो तो वो तो उसने कहा प्रभुपाद मे भी ने कहा शायद तो प्रभुपाद ने कहा ये देखो ये महान मूर्ख लोग उसको हम बता रहे हैं कि ऐसी जगह है जहां पे कोई दुख नहीं है फिर भी वो सोच रहा है शायद तो ये मूर्ख है कृष्ण इसलिए शास्त्र में कह रहे हैं कलयुग में सब शूद्र है मूढ़ है मूढ़ मतलब बेवकूफ है उनको अगर कोई अच्छी चीज भी दी जाए तब भी नहीं लेंगे एक बार एक प्रेस रिपोर्टर भी आया था उसने शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि प्रभुपाद लेक्चर में भागवतम से बोल रहे थे कृष्ण ही कह रहे हैं कि भागवतम में कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा तो एक आदमी जो रिपोर्टर था वो बोला कि प्रभुपाद उसमें क्या है हम डॉग बन जाएंगे फर्क क्या पड़ रहा है बन जाएंगे कुत्ते उसमें भी इंजॉय करेंगे उसमें मजे करेंगे तो प्रभुपाद ने कहा देखो ये लो ये डॉग बनने को तैयार है बस डॉग बनने को तैयार है मगर गॉड को नहीं जानना चाहता और इसको लग रहा है मैं उसमें भी मजे कर लूंगा सो ये हमारी बुद्धि हो चुकी है तो ये वास्तविकता नहीं है क्यों हमें तो समझ ही आ रहा है कि वो बेवकूफ है नहीं वो पूरी माया में है उसको सिंपल सिंपल चीजें समझ नहीं आ रही सो इसलिए वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम ताप तिरोन्मूल उन्मूलनम भक्ति से हमें वास्तविक वस्तु पता लग जाएगी वास्तविक वस्तु मतलब क्या है वास्तविक वो वस्तु होती है जो कभी खराब नहीं होती जैसे अगर आपका वास्तविक सोना असली सोना क्या है जो कभी खराब नहीं होगा वो ओरिजिनल सोना होगा नहीं अगर उसमें मिलावट होगी तो खराब हो जाएगा मगर वास्तविक सोना जो होगा उसमें मिलावट नहीं होगी कभी खराब नहीं होगा उसी प्रकार वास्तविक वस्तु कौन है वास्तविक वस्तु वो है जो कभी खत्म नहीं होती जो नित्य है और वो एक ही है वो कौन है वो है कृष्णा कृष्णा नित्य है हम सब अनित्य हम सब मर जाएंगे तो वेदम वास्तवम अत्र वस्तु ताप त्रयोन्मूलनम और भक्ति शुद्ध भक्ति करने से सारे दुख धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे दुख मतलब होता है कि ऐसा मतलब इसका मतलब नहीं है दुख का मतलब कि आपके पास पैसे आ जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा हो भी सकता नहीं भी हो सकता वेल ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो गए तो आप ठीक हो जाओगे आपके पेट में दर्द होगा और आप कहोगे अरे पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा मैं तो भक्ति कर रहा हूं ऐसा नहीं होने वाला सारे दुख खत्म होने का मतलब है कि जन्म मृत्यु से बाहर हो जाओगे सारे दुख खत्म होने का मतलब है कि हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और फिर इस संसार की तरफ नहीं जाएगा आकर्षित नहीं होगा और सारे दुख खत्म होने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि हम कभी भगवान को नहीं भूलेंगे सबसे बड़ा दुख यही है कि हम भगवान को भूल जाते हैं हमें याद ही नहीं रहते, या अभी तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख होगा कि हमें याद ही नहीं आते भगवान, भूलने की बात तो बहुत दूर की बात है, मगर भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख है कि हम कि वो भगवान को कि अगर भगवान को भूल जाए तो ही सबसे बड़ा दुख है। दैट्स द पॉइंट। उताप त्रयोन उन्मूलनम, ये दुख खत्म हो जाता है शुद्ध भक्ति करने से। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर, और ये सारी जो नॉलेज है ये श्रीमद् भागवतम में दी गई है। श्रीमद् भागवतम, ये जो भागवत गीता में भागवतम, इसलिए इसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि हम लोग कहां है, कहां जाना है, क्यों जाना है, वहां पे क्या होता क्या है, तब इंटरेस्ट आने लगेगा। इसको इनको पीछे ले जा सकते हैं बच्चों को, मतलब क्या हो क्या रहे है? पीछे बैठ जाओ या तो मतलब पॉइंट ही तो कुछ समझ तो आएगा नहीं इसको वैसे भी। सो ये पढ़ के ये नॉलेज लो, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये जानने के प्रयास करो कि प्लान क्या है, ये सब क्रिएशन क्या है, हम लोग कौन है, हम लोग कहाँ हैं, कहाँ जाना है, ये बहुत जरूरी है। इसकी अपनी बुक होना, एक्चुअली स्कूल में पढ़ाना चाहिए मगर हम स्कूल में पढ़ा नहीं रहे, पॉइंट ये है। सो ये सब भागवतम में दिया है, भागवत गीता में दिया है, और अगर भागवतम है तो और किसी शास्त्र की कोई जरूरत ही क्या है। सद्यो हृदय अवरुद्धयते अत्र कृति भी सुश्रुति भी तत्क्षणात्, तो शास्त्र कह रहे सुश्रुति भी तत्क्षणात्, जैसे ही तुम सुनना शुरू करोगे ये उसी वक्त तुम्हें समझ आने लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है समझना, आध्यात्मिक जीवन है कैसे करेंगे, क्या होगा, घर छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको बस जानना पड़ेगा कि हमें कहां जाना है और कैसे निकले यहां से संसार से, बस, और भक्ति करो, दैट्स इट, कृष्ण को जानने की कोशिश करो बस, सिंपल, बहुत सिंपल है। तो लैक ऑफ नॉलेज है, बस ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान में हम लोग पढ़े हुए हैं इसलिए दुख पा रहे हैं, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। अगर आप अगर रोड पे चल रहे हो आपको पता ही नहीं कि रेड लाइट क्रॉस करनी है नहीं करनी, आप रेड लाइट क्रॉस कर गए तो आपको फाइन हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगी, नहीं आपको मुझे नहीं पता था क्या है, तो नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था, तो रोड पर चली क्यों रहे हो तुम। सो अज्ञान है, अज्ञान हटाओ और एंड बी हैप्पी, दैट्स इट, और भक्ति करो तो उससे धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सुशोभित तक्षण आती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ कहना है, कोई प्रश्न है? 10 मिनट है तो इसलिए थोड़ी लाउडली बोलो। संशय आते हैं क्योंकि हमने पूरा नहीं पढ़ा अच्छी तरह, संशय आते हैं क्योंकि हमने पूरी तरह जाना नहीं। सो अगर आप अच्छी तरह जानते हो तो संशय नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि एक जगह, जैसे मैंने टिम्बक्टू बताया, आपको संशय आएगा है भी नहीं है, मैं कहूं चलो मैं लेके चल रहा हूं, तब बात तो मान लोगे मगर आपको बाद में संशय आएंगे, यार है भी या नहीं है, ऐसी बोल रहे हैं कहीं और ले जाएंगे। मगर अगर आप जाके फिर अपना एटलस देखोगे उसमें दिखाएगी, इंटरनेट देखोगे उसमें टिम्बक्टू होगा, वहां पे देखोगे मैप में लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे खाते हैं, जितना ज्यादा जानोगे उस जगह के बारे में उतनी ज्यादा कन्विक्शन आ जाएगी। तो हमें ज्ञान, हमें पता कम है इसलिए हमें संदेह आ रहे, और जान लो अच्छी तरह तो संदेह नहीं आएगी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, नॉलेज की कमी है।
800 किलोमीटर आपने बताया भूल हो गया, तो 800 किलोमीटर तो बहुत नजदीक है 800 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा नजदीक है।
आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट पता है कितनी है? 8 किलोमीटर। और आज तक एक ही आदमी गया ऊपर तक, सबसे बड़ा पर्वत है
वो, तो
डिफिकल्ट नहीं वो, हाइट में 800 किलोमीटर बहुत होता है। हाँ वो बात है कि वो जो जगह है ना 800 किलोमीटर जहां पे होती है जगह, वो हमें दिखाई नहीं देंगी, वो अलग डायमेंशन में होती है, वो ये भी बात है, मतलब नहीं नहीं वो डायमेंशन अलग है, डायमेंशन समझते हो, कैसे बताऊं मैं, आयाम कैसे बता सकता हूँ, अब ये समझ लो अलग ही है वो दिखाई नहीं देगा हमें, मगर है वहां कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं दिखाई देते, जैसे भूत होते हैं हमें नहीं दिखाई देते मगर होते हैं, नहीं होते नहीं होते सो होते हैं मगर जैसे जैसे मान लीजिए ये टीवी की तरंग है दिखाई नहीं दे रही मगर है नहीं है, नहीं होंगी तो कैसे आपका सेलफोन कैसे चलेगा, तो है मगर दिखाई नहीं देंगी, तो कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती मगर होती हैं, वो सूक्ष्म होती हैं बहुत। तो ये जो लोग होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते, मतलब मानव की आंखों को नहीं दिखाई देंगे। हाँ तो दिखाई नहीं देगा ना, वो दिखाई नहीं देता उनको वो उसके। हाँ आप पार भी जा सकते हो, आप ना कुछ छू सकते हो ना देख सकते हो, मगर आपको अगर आप उस डायमेंशन में चले गए तो देख सकते हो आप, और डायमेंशंस होते हैं अलग, साइंस भी कहती है डायमेंशंस होते हैं। अब जैसे पार क्या, जैसे मान लीजिए अभी सेलफोन की तरंगें आ रही इतनी सारी, तो क्या पार नहीं करके चले जाते आप, या खड़े रहोगे अरे यहां से तरंग जा रही है दूर रहो, जाएंगे जो टकरा जाएंगे, ऐसे तो सभी टकराते रहेंगे तरंगों से। नहीं नहीं, तो वो जो लोग हैं वहां के लोग हैं वो तरंगों से बने होते हैं ऐसी, ये समझ लो। तो अब उनके पार आर पार जो भी जा सकते हो कुछ भी कर सकते हो, तो उसको कहते हैं। तो कभी कभी वो लोग फिर धरती पे आ जाते हैं, जैसे जब वो होते हैं ना जब ग्रहण होता है तो वो धरती पे आ जाते हैं सब लोग, और क्योंकि उनका शरीर तरंगों से बना हुआ है तो वो दूसरों के शरीर में भी जा सकते हैं। तो इसलिए ग्रहण के समय जो खा रहा होता है, सो रहा होता है, बकवास कर रहा होता है, उसके शरीर में चले जाएंगे तो वो प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए बीमार पड़ जाएंगे हम, जो भी हो जाएगा जो भी है। तो है ऐसी चीजें, ठीक है ना, ये ठीक है आपका प्रश्न तो ठीक है। मगर कृष्णा मगर ये नहीं कह रहे अंदर झांको, तो गीता में कृष्णा ही तो बोल रहे हैं, तो कह रहा हूं गीता में नहीं है ऐसा कहीं। गीता में कृष्णा ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया, गीता में कृष्णा छठे अध्याय में कह रहे हैं कि अपने आंखों के बीच में आप ध्यान लगाओ। कृष्णा कह रहे हैं ध्यान योग होता है, ध्यान योग पद्धति जिसमें योगी लोग अपने यहाँ पे ध्यान लगाते हैं और एक बिंदु पे और मंत्र बोलते हैं ओम या जो भी जप करते हैं। सुवांग वांग नहीं, वो तो ढोंगी बोलते हैं, वो तो ढोंगी है, मतलब जो असली ध्यान योगी होते हैं वो सुवांग वांग नहीं बोलते, वो तो ऐसी पागल लोग बोलते हैं सुवांग सुवांग। सो आई मीन टू से वो होता है कुछ, मतलब होता है ध्यान लगाने का, ऐसे मतलब समझ के कुछ करते हैं, ऐसे नहीं होता। सो मगर वो जो मगर शास्त्र में ऐसा कभी नहीं देखा कि अंदर झांक के देखो, ये शब्द ही अजीब सा है, ऐसा नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप यहां पे आप ध्यान लगा सकते हो, मगर अंदर झांक के देखने का कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा बड़ा अजीब सा शब्द है, ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं यहां पे ध्यान लगा के क्या करना होता है, यहां पे ध्यान बस ये करना है, मगर कृष्णा तो नहीं कह रहे यहां पे ध्यान लगाओ और अंदर झांक के देखो, ऐसा तो कभी नहीं कह रहे, अपने अंदर कूद जाओ, क्या मतलब क्या है इसका, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है नहीं ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो ऊपर के जो लोग हैं, जो यक्ष हैं, जो वो सब हैं, जो वो सब वो इन चीजों में चले जाते हैं अन्न में शरीर में, तो फिर वो कंटेमिनेट हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो इसलिए कुशा डालने से शुद्ध रहता है, वरना खाओगे बीमार पड़ जाओगे, बस और कुछ नहीं होगा। जप करना चाहिए तो हमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप साइंटिस्ट नहीं मानते मगर है साइंटिस्ट का क्या, उनको तो कुछ पता ही नहीं क्या। मैंने तो नहीं किया क्या, वो प्रसाद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कह देता प्रसाद तो भगवान को अर्पण है, उसको कुछ नहीं हो सकता, उसमें कुछ अवश्य ना डालेंगे, वो तो ऑर्डिनरी लोगों के लिए जो भोगी हैं जो कुछ नहीं करते, तो कुछ तो डाल लें, कुछ तो भला हो जाएगा, मगर जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो प्रसाद है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमारे लिए नहीं है। दैट्स इट।
जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए तो वैसे भी ये सब कोई अटैक नहीं करते, कोई
नहीं, नहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जो भक्ति करते हैं। तो सही में भक्ति करते हैं, जो दिखावा नहीं करते उनको कुछ नहीं होता। या पांच मिनट और हैं तो कोई पूछ सकता है, तो मैं शायद स्टॉप वेल कर सकते हो, जो भी है देख लो, जैसे जो भी करना है। यही मत करते रहो, चैंटिंग करो बस, वरना पागल हो जाओगे। ऑर्डिनरी लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं कर रहे वो ये सब करते रहे जो भी करना है, मगर हमारे लिए जप करो बस। अच्छा है, कुछ नहीं लिखा, मुझे नहीं पता क्या है, बेकार की बात है। खैर अगर 2012 में प्रलय भी होगी तो कौन सा भक्ति कर लोगे, या कौन सा आप लोग सब बहुत ही जोरदार भक्ति कर लोगे, तब भी कुछ नहीं आपको फर्क पड़ेगा। तो फायदा ही गया आपको बताने का कि 2012 में कुछ होने वाला है, तब भी वैसे ही करते रहोगे ढीले ढाले सब लोग। कोई पॉइंट नहीं है ऐसे बात करने का, पॉइंट तब है तब हम रिसर्च करके बताएं कुछ करें, जब आप प्रॉमिस करो कि भैया आपसे मैं 2 साल में हो जाएगा तो सबको मैं भक्ति कर रहा हूं, बस बंद अब चैंटिंग करेंगे तो ठीक है, वरना बेकार टाइम वेस्ट है इस पर बात करना। जो होगा होगा, फिर देख लेना, नहीं फिर देखेंगे।
शास्त्रों में जो पहले भी बहुत देर पहले भी तो बुजुर्ग लोग भी बोलते थे कि ना 10 कोस में ना दिया जलेगा,
वो क्या है,
सारी आबादी खत्म हो जाएगी,
बहुत कम रह जाएगी।
हो सकता है आगे, मगर पता नहीं कब होगा, किसी कुछ नहीं पता कहने वाले,
इसका वर्णन है कुछ
पता नहीं, मैं देखता भी नहीं इसके बारे में।
शास्त्रों में भी कलयुग जो है, अभी बच्चा है, अभी कलयुग अपनी बुरियों पर भोगेगा, तब जाके होएगा ना महापले, जो प्रलय होएगी।
खैर सबसे बड़ी बात है, शास्त्रों में लिखा है प्रलय, पता है क्या है सबसे बड़ी प्रलय है मृत्यु। 3 तरह की प्रलय होती है, और शास्त्रों में लिखा है जो जो चौथी प्रलय जान लेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो एक होती है अर्ध प्रलय, एक होती है प्रलय, एक होती है महाप्रलय, मगर चौथी प्रलय मृत्यु जो हर एक के जीवन में होगी, उसकी चिंता करो, बाकी सब भूल लो। बाकी हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कलयुग मान लीजिए सपोज कलयुग शास्त्रों में 4,32,000 साल है, हमें क्या फर्क पड़ गया इससे, कुछ पड़ गया कुछ, हम क्या कर सकते हैं उसका, बल्कि आलसी हो जाएंगे, अरे बहुत टाइम है अगर हम जिंदा रहे तो अभी 100 साल भी हम कहते हैं बहुत टाइम है। बल्कि हमें तो बोलना चाहिए कल ही खत्म होने वाली सृष्टि, 2012 क्यों, कल खत्म हो जाएगी, ये सोच के चलना चाहिए। कृष्णा तो उद्धव से ही कह रहे हैं कि ऐसे सोच के जियो आज के दिन कि कल मर जाओगे, तब सही से भक्ति करोगे, तब कभी भूलोगे नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वरना भूल जाओगे, वरना सोचोगे अभी जो टाइम है ये है वो है। तो ये सब नहीं, ये सब जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है इसको। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बट कोई मतलब नहीं है हमें इससे, ठीक है नहीं ठीक है, यही है कि मरने वाले हो और भक्ति करो जल्दी से, ये इन्फॉर्मेशन है बस, ये एक ही इन्फॉर्मेशन काफी है। मैं भी मरने वाला हूं, ये भी इन्फॉर्मेशन है, सब मरने वाले हैं यहां पर, कोई जिंदा नहीं रहेगा, कल भी मर सकते हैं, अभी भी मर सकते हैं, अगले सेकंड भी मर सकते हैं, मगर आश्चर्य नहीं है कि हम मर सकते हैं, आश्चर्य यह है कि फिर भी हम कुछ नहीं करना चाहते, यह आश्चर्य है। फिर भी हम सीरियस नहीं होंगे, नहीं अगर मैं आप किसी को बता भी दूंगा ना, मान लीजिए किसी की कुंडली देख के भी बता देंगे भी 1 साल बाद तुम मरने वाले हो, तब भी वो घर छोड़ के वृंदावन नहीं जाएगा जब करने, पॉसिबल ही नहीं है, वो कहेगा भैया अभी तो अभी संभाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, जो भी वो नहीं जाएगा, शायद आप में से भी कोई ना जाए, और कहां जाके रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, घर में ही रहो, फिर भी दिमाग में नहीं घुसेगा, तो इतना आसान नहीं है समझना है कि मृत्यु आ रही और टाइम कम है। जिसको ये समझ आ गया बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब वो वास्तविकता है। नहीं, वास्तविकता तो यही है कि टाइम नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है, मैं कहा लोगों को तो ये भी नहीं पता उनके पास 7 दिन है भी या नहीं। नहीं, परीक्षित महाराज तो पूछ रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए मृत्यु के समय। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे थे कि चलो तुम्हारे पास तो है, निश्चित है, मगर लोगों को ये भी नहीं पता 7 दिन है, और फिर भी लोगों को लोग समझने की प्रयास नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हैं अपना, प्लानिंग करते रहते हैं हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। मृत्यु सर्वासरासा, हम सबको छीन लेगी मृत्यु, तो ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण का चिंतन करो, दैट्स इट। ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।